और उल्टा उन्हें आपसे माफी मांगना तो दूर की बात, उल्टा उन्होंने सारी चीजों के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। और रही बात आकाश भैया की, भले ही आकाश भैया अब रश्मि दीदी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी गलती की। किसी और की गलती की सजा उन्होंने मेरी रश्मि दीदी को दी है, उन्हें इस तरह से सजा देने का कोई हक नहीं है। अब आगे आप फिक्र मत कीजिए। आप देखिए, मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि सुमित भैया को खुद अपनी गलती का एहसास होगा। अब जैसे ही रौनक ने इतने कॉन्फिडेंस से ये कहा, आस्था तुरंत ही एक्साइट होकर बोली, अच्छा ऐसा क्या प्लान है, मुझे बताओ ना। तब रौनक ने अपने शब्दों में आस्था के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया था, और जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने भी फटाफट से राधिका को अपने शब्दों में आगे समझाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबने मिलकर एक ऐसा प्लान बताया था जिससे सुमित अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से रोक नहीं पाएगा, और उसे हर हाल में उसके बाद राधिका को एक्सेप्ट करना ही होगा, साथ ही साथ अपनी गलती का भी उसे एहसास करना होगा। अब जैसे उन्होंने अपना प्लान राधिका को बताया, राधिका शर्माने लगी और खुश होते हुए बोली, लेकिन यार हम ये सब ऐसा कैसे कर पाएंगे। तब रौनक अपने स्टाइल में बोली, डोंट वरी दीदी, मैं हूं ना। ऐसा बोलकर रौनक मुस्कुराने लगी थी। दूसरी ओर जल्द ही अरमान अपने मेंशन में आ पहुंचा। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया मेंशन में आया, उसने देखा नानी माँ और साथ ही साथ दादाजी तो एक तरफ बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे, और क्योंकि नानी माँ जब भी दादाजी के साथ होती थी तो वो अपने गांव के कितने सारे किस्से दादाजी को सुनाया करती थी। उसके बाद दादाजी उनकी बातों में पूरी तरह से खो जाया करते थे। अब अरमान की नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी, तो वो थी सिर्फ आस्था, लेकिन आस्था तो आज हॉल में दिखाई नहीं दी। तभी अरमान का ध्यान किचन में चला गया कि जरूर आस्था उसके लिए मूंग की दाल के हलवे की प्रेपरेशन कर रही होगी, क्योंकि उसने 10 मिनट बोला था, लेकिन अरमान तो पूरे 35 मिनट बाद वापस आया था। तो इसीलिए कुछ सोचते हुए अरमान आज किचन में चला गया था, और उसने देखा कि सेम ड्रेस पहने हुए आस्था किचन में कुछ कर रही थी। अब अरमान के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने जाकर पीछे से आस्था को हग कर लिया था। लेकिन आस्था को बाहों में भरते ही अरमान को कुछ अलग ही तरह का एहसास हुआ, और जैसे ही उसने अब उसकी शक्ल को देखा तो अरमान का चेहरा एकदम ही डार्क हो गया था, क्योंकि वहां पर आस्था नहीं बल्कि प्रियंका थी। प्रियंका जो कि ये देख चुकी थी कि आस्था इस वक्त बाकी सबके साथ राधिका के कमरे में है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था, क्योंकि अरमान जब आस्था को बोलकर गया था कि वो जल्दी वापस आएगा, तो इसीलिए अब प्रियंका आस्था के जैसा ड्रेसअप करके सीधा किचन में जा पहुंची थी, क्योंकि उसने अरमान को बाहर से ही आते हुए देख लिया था। फटाफट से किचन में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई थी ताकि अरमान उसे छुए, और ऐसा ही हुआ था। प्रियंका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब जैसे ही अरमान ने प्रियंका का चेहरा देखा, वो कोल्ड वॉइस में मुंह बिगाड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी प्रियंका अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर बोली, जीजा जी ये क्या, आप अपनी साली के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हाँ, हमें तो लगा कि आपको शायद इन सब चीजों में इंटरेस्ट ना हो। अब प्रियंका की बात सुनकर अरमान का खून खौलने लगा, क्योंकि प्रियंका से वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था, स्पेशली जब से उसने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रियंका को अपनी बीवी कहना पड़ा था, क्योंकि अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन प्रियंका के साथ अपना नाम जोड़ता हुआ नहीं देख सकता था। वहीं आस्था को राजेश ने बता दिया कि अरमान आ गए हैं, तो आस्था जल्दी से दौड़कर किचन में ही गई थी, और किचन में वो प्रियंका और अरमान को साथ में देख चुकी थी। वहीं प्रियंका दांत दिखाते हुए अरमान की ओर ही देख रही थी। वहीं अरमान का खून खौल रहा था। ठीक उसी वक्त प्रियंका की नजर आस्था पर पड़ी। आस्था को वहां देखकर वो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाकर बोल पड़ी, अरे आस्था तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मैं और अरमान जी तो बस, जानबूझकर प्रियंका ने इतना ही बोला था। तभी आस्था सीधा किचन में आ गई थी और अरमान के हाथ को पकड़कर बोली, यस प्रियंका दीदी, कहिए आप कुछ कह रही थी। प्रियंका को तो लगा कि आस्था जब अरमान को उसके साथ देखेगी तो जरूर उसके मन में शक पैदा हो जाएगा और दोनों के बीच दूरी आ जाएगी, लेकिन तभी आस्था ने बड़े ही हक से प्रियंका के सामने अरमान का हाथ पकड़ा था और प्रियंका के कपड़े पर पॉइंट करते हुए बोली, प्रियंका दीदी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने जीन्स और ट्राउजर पहना हुआ था, फिर अचानक से आपने ये हमारे जैसे कपड़े कब पहन लिए। अब जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया, प्रियंका थोड़ा सा झेप गई थी और जल्दी से हड़बड़ाकर बात बनाते हुए बोली, आस्था अगर मैंने भी तुम्हारे जैसे कपड़े पहन लिए इसमें क्या बड़ी बात हो गई। आस्था तुम मुझसे इस तरह से सवाल क्यों कर रही हो। तब प्रियंका की बात सुनकर आस्था पूरी तरह से खिल उठी थी। अगले ही पल अरमान की ओर घूरते हुए देखकर बोली, आप अगर आ गए थे तो आप सीधा मुझसे कमरे में नहीं मिल सकते थे, आपको इस तरह से किचन में आने की क्या जरूरत थी। आस्था बिल्कुल टिपिकल बीवियों वाली हरकत कर रही थी, बिल्कुल एक पजेसिव बीवी होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। आस्था को इस तरह से रुबाब से बोलते हुए देखकर प्रियंका हैरान हो रही थी, क्योंकि जिस हक से आस्था अरमान से बातें कर रही थी, अरमान को डांट रही थी, प्यार से उसे बोल रही थी, तो ये बात प्रियंका को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी।
अरमान जल्दी से हकलाकर बोला, वो मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया था। अरमान को हकलाता हुआ देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाई और जोरों से हंसने लगी, क्योंकि अरमान के सामने अच्छे अच्छे लोगों की जबान बंद हो जाया करती थी, उनकी स्पीच गुम हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ तो आस्था के इस तरह से सवाल करने पर अरमान खुद को रोक नहीं पाया और वो हकलाने लगा था। अब कोई और भी था जो उस वक्त अरमान को इस तरह से हकलाते हुए देख रहा था, वो थे वो चारों के चारों जो कि वीर रायचंद को ना पकड़ पाने के बाद सीधा मेंशन में आ गए थे। अब जैसे उन्होंने अरमान को किचन के पास देखा तो सभी वहां जमा हो गए थे, और जब आस्था अरमान से सवाल कर रही थी, अरमान को इस तरह से हकलाते हुए उन सब ने देख लिया था और सभी आंखें और मुंह खोलकर अरमान की ओर देखे जा रहे थे। अरमान आज तक हकलाया नहीं था। तभी आहान ने ध्रुव के कानों में कहा, भाई देखा तुमने, अरमान भाई हकला रहे हैं, जिनके सामने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग तक अपनी जबान नहीं खोलते, वो देखो आज वो हकला रहे हैं। तभी ध्रुव ने आहान के कान में वापस सरगोशी की थी और फुसफुसाते हुए कहा, यार मैंने तो सुना था कि अच्छे अच्छे लोगों की अपनी बीवी के सामने बोलती बंद हो जाती है, लेकिन आज सच में देख भी लिया, वाकई औरतें महान हैं। ऐसा कहकर ध्रुव आहान को देखने लगा था। वहीं आकाश और सुमित भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे, वो भी हैरानी से अरमान और आस्था की ओर ही देख रहे थे। तभी आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर आहान तो खुद को रोक नहीं पाता और वो भी हंसने लगता है, साथ साथ ध्रुव भी हंसने लगा। वहीं आकाश और सुमित भी हंसते हुए इधर उधर देखने लगे थे। वहीं प्रियंका को ऐसा लग रहा था मानो कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। प्रियंका आस्था जैसा गेटअप करके अरमान को फुसलाना चाहती थी ताकि अरमान उसे छुए। अरमान ने छुआ भी था, लेकिन अब तो यहाँ आस्था ने सारा माहौल ही बदल दिया था। वहीं अरमान ने जैसे ये देखा कि ऑलरेडी वहाँ उसके भाई दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं और सभी उसकी ओर ही देख रहे हैं। अरमान के गाल आज पहली बार तपने लगे थे, उसे एहसास हुआ कि आज वो शर्मा रहा था। तभी उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था।
आस्था जो कि अभी थोड़ी देर पहले खूब तेजी से हंस रही थी, अरमान के इस एक्शन के बाद वो तुरंत चुप हो गई थी। सबके सामने इस तरह से गोद में उठाने पर आस्था तक को काफी शर्मा रही थी, लेकिन फिलहाल तो वो कर क्या सकती थी, उसने तो अरमान को छेड़ा था, इस तरह से उसे अरमान को डांटना नहीं चाहिए था, अब तो उसे भुगतना था। और जल्दी ही अरमान सीढ़ियां चढ़ने लगा। वहीं किचन से हंसने की आवाज़ें सुनकर नानी माँ साथ ही साथ दादाजी भी वहाँ आ गए थे और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देख रहे थे और मन ही मन में अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने की दुआएं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रौनक का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग राधिका को सुमित की आंखों के सामने नहीं जाना था, इसीलिए राधिका अपने कमरे में थी और रौनक ने भी तब तक राधिका के कमरे में स्टे करने का डिसीजन लिया था तब तक कि वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर लेती। वेल, अब सभी के सभी घर आ गए थे। रौनक को इस बात के बारे में पता चल चुका था तो उसने राधिका से बोला कि वो कमरे के अंदर ही रहेगी और साथ ही साथ एक और बात उसे बोली कि वो खाना पीना भी अपने कमरे में ही खाएगी और वो खाना रौनक खुद उसके लिए लेकर आएगी। राधिका ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली थी क्योंकि उसे भी रौनक की बातों में दम नजर आ रहा था कि अगर वाकई ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि सुमित मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से उससे शादी कर रहा है। आखिरकार शादी का मामला था, उसकी पूरी जिंदगी का मामला था, तो इस तरह से वो उसे नहीं हल्के में नहीं ले सकती थी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग राधिका अपना डिसीजन ले रही थी। वहीं अरमान आस्था को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया था। आस्था को अभी भी हंसी आ रही थी और अरमान के सीने पर सर रखकर हंसे जा रही थी। वहीं अरमान आस्था को हंसते हुए देखकर और भी ज्यादा ब्लश कर रहा था और उसने सीधा आस्था को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया था, खुद उसके ऊपर आ गया था और आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर उसने उसके गालों को चूम लिया, आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या हुआ, हंसी आ रही है? आपको अगर कल को कोई मुझे ये कहेगा कि अरमान सिंघानिया किसी चीज़ से डरता है तो मैं बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे कह दूंगा कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था की हंसी और तेज हो गई थी और वो तेजी से हंसने लगी और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ आपसे प्यार करना है। आप छोटे बच्चे हैं क्या जो आप हमसे इस तरह से डर रहे हैं? ऐसा बोलकर आस्था अपना मुंह को बच्चों जैसा बनने लगी थी। वहीं आस्था की मासूमियत पर अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। साथ ही साथ उसे अबीर सिंह राठौड़ का चैलेंज भी याद था कि उसकी बीवी उससे डरती है, प्यार नहीं करती। आज भी अबीर सिंह राठौड़ ने यही बोला था। ये बात याद आने पर अरमान ने आस्था के ऊपर लेटे लेटे ही पूछता है, अच्छा मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी? तब आस्था अरमान के सर पर हाथ सहलाते हुए बोली, जी बोलिए। तब अरमान, क्या आप मुझसे डरती हैं? तब आस्था अरमान के सवाल को सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई थी और अगले ही पल बोली, हमें कभी कभी आपसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, जैसे कि उस वक्त लगा था जब आपने उन लोगों को मारा। आस्था उन लोगों की बात कर रही थी जिनको जंगल में अरमान ने बेरहमी से मारा था। तब अरमान प्यार से बोलता है, लेकिन उन्होंने गलती की थी ना, और वो कोई नॉर्मल या इनोसेंट नहीं थे। आपसे पहले भी उन्होंने तीन लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के बाद तीनों लड़कियों की उन्होंने बेरहमी से हत्या भी कर दी थी, और आपके साथ भी वो लोग यही करना चाहते थे। बहुत पहले से ही उन्हें मेरे आदमी ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई। उसके बिल पर जो उन लड़कों की मौत का बोझ था वो अब एकदम से ही कम हो गया था, और अचानक से उसने भीगी हुई आंखों से अरमान को गले से लगा लिया था और गिल्टी आवाज में बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया था, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर आस्था ने अरमान को कसकर गले से लगा लिया था। वहीं अरमान ने तुरंत उसके होठों को चूमते हुए कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, आप कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे डांट सकती हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा डरना भी एक अच्छी फीलिंग हो सकती है, ये मुझे आज पता चला है। ऐसा बोलकर अरमान ने अपना सर आस्था की नेक के पास रख दिया था और उसे किस करने लगा था। वहीं आस्था ने भी दिल खोलकर अरमान का स्वागत किया था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही सभी लोग एक साथ जमा थे। हालांकि सभी लोगों ने अपनी खबरियों को एक्टिव कर दिया था कि किस तरह से उन्हें वीर रायचंद को ढूंढना है, क्योंकि अरमान का ऑर्डर था वीर रायचंद को हर हाल में ढूंढ कर लाना होगा, तो इसीलिए सभी लोगों ने अपने अपने खास आदमियों को इस काम पर लगा दिया था। वहीं देव सब कुछ हैंडल कर रहा था। देव की जिम्मेदारी थी वीर रायचंद का पता लगते ही सबसे पहले डेविल किंग के आदमियों को इन्फॉर्मेशन, यानी कि अरमान सिंघानिया, उसके आदमी, खास आदमी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर, मारिया को देनी थी। तो इसीलिए देव सिंघानिया मेंशन बहुत कम आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर वर्क का लोड काफी बढ़ चुका था। हालांकि टाइगर भी देव के साथ ही काम कर रहा था। वहीं आस्था अरमान की बाहों में लेटी हुई थी और अरमान की चेस्ट के पास खुले दो बटनों के साथ खेल रही थी।